أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارا نمبر 21. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پارے کا آغاز ہے سورۃ العنکبوت کی آیت سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی خوبی بیان کی کہ پڑھنا تو اپنی جگہ، لیکن پڑھ کر سنانا اصل خوبصورتی اسی میں ہے. ہم سب بھی اپنے مشاہدے سے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ قرآن کو سننے کا زیادہ اثر ہوتا ہے پڑھنے کی نسبت، الا ماشاءاللہ دونوں ہی چیزیں اچھی ہیں. لیکن جس طرح کے اس وقت میں بول رہی ہوں، یہ میرا کلام ہے، میری بات آپ سن کر زیادہ سمجھ سکتے ہیں. اگر کوئی میرے ایک ایک لفظ کو لکھ دے اور آپ کو دے دے کہ اس کو سن لیجئے، فائدہ تو آپ اٹھا لیں گے، لیکن جو کیفیت سنتے وقت ہوتی ہے، جس میں جذبات بھی ہیں، آواز کا اتار چڑھاؤ بھی ہے، ایکسپریشنس بھی ہیں، یہ لکھی ہوئی بات میں نہیں ہوتا. تو بہت خوبصورت بات سے پارا شروع ہوتا ہے کہ قرآن کو سنو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو. اور دوسری بات دیکھیے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور بے حیائی سے روکتی ہے. کیسے؟ کوئی شخص گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، بیچ میں ایک نماز کا وقت آ گیا، اس گناہ سے نکلنا پڑے گا. ایک لڑکی کسی لڑکے سے انوالو ہے، تھوڑی دیر بات کرنے کے دوران کہتا ہے ایکسکیوز می، مجھے جانا ہے، ظہر کا وقت ہے. اوکے، چلا گیا، آدھے گھنٹے بعد آ گیا. ابھی اس سے بے تکلف ہو نہیں پائی تو عصر کا وقت آ گیا، اب وہ پھر جائے گا. میرا خیال ہے مغرب پہ جائے گا تو اس سے پہلے لڑکی اس کو خدا حافظ کہہ دے گی کہ سوری، تم میرے کام کے نہیں ہو. ویسے بھی دیکھیے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے میں نماز کی اذان ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. جن کو عادت ہے نا، وہ کہیں گے اوکے نماز کے بعد بات کریں گے. بس وہ نماز بیچ میں آئی، وضو کیا، دل دماغ ٹھنڈا ہوا، غصہ دور ہو گیا. کوئی دوا کھائے اور اثر نہ ہو رہا ہو تو فکر ہے. تو نمازوں کے ساتھ پھر گناہوں کا پرہیز بھی لازمی ہے. تیسری چیز 45 عنکبوت میں، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. حقیقت ہے کہ ذکر روح ہے عبادات کی. نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا تنہائی ہو، کوئی موقع دیکھ لیجیے اللہ کے ذکر سے خالی رہ نہیں سکتا. پھر آیت نمبر 49 میں کہا گیا، بل ہوا یا تم بیناتم فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ بڑی پیاری بات ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے، ایک 7-8 سال کے بچے کے سینے میں آ جاتی ہے. آپ اپنی بولی ہوئی باتیں دوبارہ دہرانا چاہیں تو آپ نہیں دہرا سکتے. قرآن کیسے لفظ بلفظ یاد ہو جاتا ہے، اور اس میں رحمت بھی ہے اور ذکر بھی ہے. آیت 51 میں پتہ چل گیا. اس سے رحمت کب ملتی ہے؟ جب ہم اس کو اچھی طرح پڑھتے ہیں. ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں. یعنی ریمائنڈر کب بنتی ہے؟ جب ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو اگر میں اور آپ اپنی باقی زندگی اس کتاب کو سمجھنے میں لگا دیں، یہ ہماری زندگی کا بہترین استعمال ہوگا. آیت 56 میں فرما دیا، یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس میری بندگی کرو. کیا پتہ چلا کہ ساری زمین تو اللہ کی ہے، جہاں مرضی رہیے اللہ کے بندے بن کے رہیں. اور اگر کسی جگہ کسی ملک میں آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے پر پابندی ہے، حرام پہ آپ کو مجبور کیا جاتا ہے، حلال آپ سے روک لیا جاتا ہے، عبادات پہ پابندی، آپ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ اپنے ریچولز کو فالو نہیں کر سکتے، پھر ہجرت کر لو. ہجرت کے نام پہ لوگوں کو خوف آتا ہے، ہائے کیا ہوگا، اگلی جگہ جا کے سیٹ ہوں گے، نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو کہے اصل ہجرت تو سب نے کرنی ہے. اگلی ہی آیت، کل نفس ذائقۃ الموت. تو موت ایک بہت بڑی ہجرت کا نام ہے، جو اس دنیا سے اٹھا کر ہمیں دوسری دنیا میں لے جائے گی. جو اس دنیا میں اللہ کے لیے اپنی من پسند چیزوں سے ہجرت نہیں کر سکتے، موت کے وقت تو ہو سکتا ہے ہر من پسند چیز کو چھوڑ کر تن تنہا زمین کے اندر جانا پڑے. تو لہٰذا جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے نام پہ چیزیں چھوڑی، उनको खुशखबरी, आयत 58 में, हिजरत के बाद सब्र भी करना पड़ता है, अल्लाह पे तवक्कुल भी करना पड़ेगा, और रिस्क कहाँ से आएगा ये अल्लाह देता है। इसलिए कभी भी रिस्क के मामले में किसी जगह ना बैठिए। आप अमेरिका में रहें या चाइना में चले जाएं या पाकिस्तान के किसी गांव में चले जाएं, आपका रिस्क मुकर्रर है, इस बात का यकीन रखिए। और आयत 64 में दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत खोल दी कि ये दुनिया खेल और तमाशा है और असल चीज़ तो आखिरत का घर है। जिसको ये बात समझ आ जाए फिर वो कभी रिस्क नहीं ले सकता इतना बड़ा कि दुनिया को बनाते बनाते आखिरत का वक्त ही ना मिले। फिर सूरत की आखिरी आयात में इंसान को यकीन दिलाया गया कि जो खुश्की में बचाता है वही पानी में बचाता है। नेमतें मिलें तो अल्लाह का शुक्र करो, नेमतें छिनें तो अल्लाह ताला की तरफ रजू करो। और आखिरी आयत में बता दिया कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्तों में मेहनत करते हैं, मुजाहदे करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अटमोस्ट कोशिश करते हैं, वक्त से, मुआशरे से, ख़ानदान से, नफ्स से, हर तागूत से मुकाबला करते हैं, फिर हम उनको अपने रास्ते दिखाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी के घर जाना चाहें और कोई आपको अपने घर का रास्ता ना दे। बात यह कि बंदा मोहसिन बन के जिए। फिर सूरत रूम है जिसको निशानियों वाली सूरत कह सकते हैं। शुरू में ही एक वाक्य की बुनियाद पे इस बात का यकीन दिला दिया गया कि इस कुरान में मुस्तकबिल की खबरें, उस दौर की दो कुव्वतें रोम और फारस को बुनियाद बनाकर मुसलमानों को खुशखबरी दी गई कि अगर आज तुम मक्का में मغلوب हो, देखना बदर के दिन एक तरफ तो तुम्हें फतह हो रही होगी और दूसरी तरफ तुम्हारे रूमी भाई गालिब आ रहे होंगे फारसियों पे। यकीन आ जाता है कि अब जो अगली बातें भी कुरान और हदीस से मिलती हैं, ख़ास तौर पे कुर्बे क़यामत और ज़िंदगी के आखिरी दौर और फिर जन्नत और जहन्नम और क़यामत का मैदान, तो मैं सोचती हूँ ये भी सच है, हमारा तो ईमान है इस पर। फिर उसके बाद दुनिया की असल क्या है, आयत 7 में, दुनिया की ज़िंदगी भी जो पाते हैं ना वो भी सिर्फ छिलके ही पाते हैं, ज़ाहिरो मिनल हयात दुनिया, तो दुनिया भी पूरी नहीं मिलती उसको, दुनिया का भी बस छिलका ही मिलता है, गूदा नहीं मिलता। आज देख लीजिए जिन्होंने अल्लाह को नाराज़ किया वो कोई सुख की नींद तो नहीं सोते, किसी दिन गोली असर कर गई तो नींद भर गए, वरना ट्रैंक्लाइजर्स भी नहीं सुला पाते, नरम गरम बिस्तर भी नहीं सुलाते, क्योंकि अनिल आखिरति हुम गाफिलून, तो आखिरत से गफलत की सजा दुनिया की खूबी भी जिंदगी में नहीं रहती। फिर इसके बाद कुछ माजी के आसार और पिछले लोगों की बातें करने के साथ ही फरमा दिया, बुराई का बदला तो बुरा ही होगा और अल्लाह ताला ने जैसे पहले पैदा किया उसके बाद भी करेगा। जिस दिन क्यामत आएगी मुजरिम तो हैरान रह जाएंगे, मायूस होंगे, उनको तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये क्यामत आनी और अचानक हो गया, हक दक रह जाएंगे। फिर पुकारेंगे उसको, फ़ोन करो, उससे पूछो, कोई हमारी मदद कर दे, है कोई बचाने वाला, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और यतफर्रकून, सब एक दूसरे से कट के लग बैठे, हर एक अपनी पड़ी हुई है, कौन किसकी मदद करे। इसके बरक्स आयत 15 में बता दिया कि ईमान लाकर अमल सालेह करने वाले उस दिन खूबसूरत बाग़ों में होंगे, उनका खूब बनाव किया जाएगा, बहुत सजे समरे होंगे। किसी प्यारे से मिलना हो तो सचता तो है ना इंसान, अल्लाह से मुलाकात कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसके बरक्स काफिर और मुकज़्ज़िब, आखरत की मुलाकात का इनकार करने वाले, वो उस दिन अजाब में पेश किए जाएंगे। फिर उसके बाद आयत नंबर 17-18, जो सुबह शाम की दुआ में भी कुछ थोड़े से अल्फाज के फर्क से आती है दुआ, हकीकत है कि एक ईमान वाले की सुबह और शाम अल्लाह के नाम पे आती है। फिर इसके बाद आयत नंबर 20 से अगली चंद आयात शोहर बीवी के रिश्ते को अल्लाह की एक निशानी दिखाता है, और देखा जाए तो ये सच है, दो मुख्तलिफ लोग, एक कहाँ पला एक कहाँ बड़ा, बस वह रंग का फ़र्क, ज़ुबान का फ़र्क, कल्चर का फ़र्क, मुल्कों का फ़र्क, लेकिन कैसे अल्लाह मोहब्बत डाल देता है। अपनी असल से ही मर्द औरत से बहुत फ़र्क होता है, और कहाँ फिर इतने और फ़र्क भी हो। तो वाकई अल्लाह का एक मौजज़ा है कि एक छत के नीचे दो इकट्ठे ज़िंदगी बसर कर देते हैं। ना शोहर को ये डर है कि रात को सोते में ये मेरा गला दबा देगी, और ना बीवी इस चीज़ की उम्मीद रखती है। कितने सुकून से, इत्मीनान से इंसान सोता है, एक दूसरे को देख देख कर इंसान जीता है। असल में यह शादी का बंधन सुकून का बंधन बनाया गया, असल बात भी यही है, जिस घर में सुकून नहीं वो सोसाइटी को कभी सुकून नहीं मिलेगा। आज वेस्ट ने घरों का सुकून छोड़ा तो बाहर जाकर कहीं लीकर शॉप में और कहीं नाइट क्लब में सुकून लेना चाह, और जिसको बीवी से सुकून नहीं मिलेगा उसको गर्लफ्रेंड से भी नहीं मिलेगा। तो इस्लाम खानदान को बहुत अहमियत देता है। शोहर बीवी का रिश्ता शुरू में मोहब्बत और मवद्दत का होता है, रोमांस और सेंटिमेंटल लाइफ होती है, बीवी भी खूबसूरत लगती है, शोहर भी अच्छा लगता है, नया नया रिश्ता और नई नई जवानी। वक्त के साथ वो भारी हो गई, वो बीमार हो गए, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया, अब छोड़ दो, नहीं बराहमा, अब बुढ़ापे में रहम करो एक दूसरे पे, तुम उसको दवाइयाँ दो वो तुम्हें दबा दे, तुम उसके पाँव दबा दो वो तुम्हारे सर को दबा दे। बुढ़ापे में ये रिश्ता और खूबसूरत होता है। फिर फिर इसके बाद रंगों का इख्तलाफ, जुबानों का इख्तलाफ। कभी अपने इर्द गिर्द रहने वालों की बोलियां तो सुने, जिस मुल्क में भी आप रहते हैं हक्के बक्के रह जाएंगे। एक ही लेटर है ए बी सी, और इतने एक्सेंट। कहीं उसको नॉर्वेजियन में आप पढ़ लें, कहीं आप उसको स्पेनिश में पढ़ लें, कहीं स्वीडिश में पढ़ लें, और कहीं उसको इंग्लिश के नाम पे पढ़ें। लगता भी नहीं कि एक ही रूट है इन सब का। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ताला ने और बहुत सारी यहाँ निशानियां बताई, जिस पे गौर करने के बाद एक बंदा वाकई अल्लाह ताला का कुर्ब महसूस करता है। फिर उसके बाद मरने के बाद जी उठने की बात की गई और बता दिया कि देखो शिर्क की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है इस दुनिया में। आयत 28 में बता दिया कि जब तुम अपने मुलाजिमों को अपना माल बराबर में बांट के नहीं दे देते कि तुम और वो एक ही जैसे हो जाएं, तो अल्लाह के बारे में क्यों बातें करते हो कि फलां को अल्लाह ने इख्तियारात दे दी और हमारी सुनता नहीं और उनकी मोड़ता नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। शिर्क को छोड़ो बल्कि करो क्या, आयत 30 में, फकीम वजह कलिद्दीन हनीफ, एक रब की तरफ फोकस्ड हो जाओ, हनीफ हो, सब चीजों को छोड़ दो। फितरत की बात की गई, किसी बच्चे को कोई उस्ताद ना मिले, माँ भी उसको पैदा करते ही मर जाए। अगर वो जवान होगा ना तो वो कहेगा कि है कोई जिसने मुझे पैदा किया। यही है जो चीज बाद में फिर इंसान के ऊपर मजीद खुल के आती है, जब किताब सामने आती है, जब कायनात पे गौर होता है, जब अकल की तराजू में परखे, तो हर चीज बोल बोल के बताती है कि अल्लाह है। हम नहीं कह सकते कि कोई बच्चा भी इस तरह का पैदा हुआ कि उसको पता ही नहीं कि अल्लाह क्या है। ठीक है, मुसलमान घर में पैदा होने वाले को एक प्लस पॉइंट तो मिल जाता है। फिर उसके बाद मजीद कुछ खूबियां, मुनी भी नहीं लई, झुक जाओ उसी की तरफ, रजू करो, तुम्हारा दिल उसमें अटकाओ। देखिए एक बच्चा है ना, छोटा सा बेबी, माँ का दिल उसमें ही बड़ा रहता है। सोए हुए को भी जा जाके देखती है सोया हुआ है, रोया क्यों नहीं, उठा क्यों नहीं, खा क्यों नहीं रहा, पी क्यों नहीं रहा, यानी सोते को भी वो उठा देगी। दिल जिस चीज में पड़ जाए आप उसके लिए मुनीब हो गए। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते उसका ख्याल आए, और बत्तखू, फिर उसे डरो भी, फिर नमाज भी कायम करो और मुशरिकों में ना हो जाओ। इसके बरक्स कुछ लोग फर्रकु दीनहुम वकानुशिया, जिन्होंने अपने दीन को फिरकों में बांट दिया, टुकड़ों में बांट दिया, मनपसंद दीन का हिस्सा ले लिया, दीन का मनपसंद हिस्सा ले लिया, आसान चीजें ले ली, मुश्किल छोड़ दी, और अपने छोटे छोटे ग्रोहों पे इतने खुश हुए कि कुल्लु हिजबिन बिमा लदैहिम फरिहून, पूरे दीन को छोड़ के, कुल को छोड़कर जुज पे राजी हो गए। फिर इसके बाद इंसान की तबीयत बताई गई कि जब दुख आता है तो बहुत ही रुजू करता है। कभी अपने बच्चों को देखा करे, जब इम्तिहान करीब हो तो जो दो रो रो के दुआएं करा, दादो दुआ करना, नानो दुआ करना, मामा दुआ करना, फिर जाए नमाज भी खुल जाते, फिर मस्कीन शक्लें बन जाती हैं। लेकिन जब कोई खुशी का मौका आता है तो फिर अल्लाह को बाज दफा इंसान भूल भी जाते हैं, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि अब इनको अल्लाह की जरूरत नहीं। बाज दफा तो इंसान मांग मांग के अल्लाह से खुशियां लेता है, लेकिन बाद में अल्लाह कोई खुश नहीं करता उन मौकों पे। फिर इसके बाद कुछ अहकाम आते हैं, हकदारों को उनका हक दो, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को, करना सब कुछ अल्लाह के लिए। आयत 29 में असल खोल के रख दी रिबा की। रिबा टीले को कहते हैं, सूद का अरबिक नाम रिबा है। अल्लाह ताला कहते हैं जो तुम सूद दे देते हो ताकि वो बढ़े लोगों के माल में, हालांकि फला यरबु इंदल्ला, तुम्हें तो बाजार लग रहा है कि बढ़ गया है, बहुत बड़ा कारोबार हो गया, आपको पैसे मिल गए सूद पे और घर बड़ा मिल गया, अल्लाह की नजर में वो नहीं बढ़। मतलब ये है कि वो दुनिया में बढ़ भी गया, अल्लाह की नजर में बड़ा नहीं। दूसरी बात यह की वो बिल आखिर डूबेगा, पीछे हम इस पे बात कर चुके हैं। इसके बरक जमा तुम इन जक़ात तुरीद हो न वछल्ला, अल्लाह की रजा के लिए जो ज़कात देते हो, तस्किया करते हो, पाकीज़गी करते हो अपने माल की, यही लोग हैं जिनका माल बढ़ता है। हलाल में अल्लाह ताला हमें बरकत दे। फिर इंसान की पैदाइश की बात करते हुए बहुत ही अहम आयत आयत 41, जिसमें जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहरी, खुश्की और तरी में फसाद फैल गया लोगों की कमाइयों की वजह से, ताकि अल्लाह उनको उनके कमाइयों का बदला चुकाए। क्या पता चला कि दुनिया में जब गुनाह आम होते हैं ना तो दुनिया में फसाद आता है, और फसाद क्या है, डीकम्पोजिशन। अल्लाह का ताल्लुक बंदों से टूटा और बंदों के ताल्लुक बंदों से टूटे। फिर का कायनात में जाओ, घूमो फिरो, देखो क्या है, और साथ ही बता दिया कि जो अल्लाह की तरफ चल पड़ता है फिर अल्लाह ताला उसको रास्ते दिखाता है, जो नहीं देखता अल्लाह की तरफ, जो नहीं जाना चाहता, फिर उसकी अपनी मर्जी है। और साथ ही साथ फिर अल्लाह ताला ने कायनात में फैली हुई कुछ मिसालें देकर सिखा दिया कि देखो पूरी कायनात तुम्हारे लिए काम कर रही है, किसके हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। कहीं हवाएं हैं तो कहीं बदलियां हैं, और कहीं बंदों की खुशी के लिए अल्लाह ताला गर्मी में हवाएं चला देता है, मुर्दा जमीन को खोल देता है। कैसे खड़ी फसलें जर्द हो जाती हैं और कहां बंजर जमीनें हरी हो जाती हैं, ये सब कौन कर रहा है, कभी सोचा तुमने? फिर कमजोरियों पे कमजोरियां, फिर कुव्वत में कमी, कभी बुढ़ापा। आयत 54 में बता दिया कि तुम हो कुछ नहीं हो, और साथ ही क्यामत की बात करके बता दिया अगर कुछ हो भी तो एक दिन तो खत्म हो जाओगे, और वो दिन बड़ा सख्त दिन आने वाला है जो आपको मुझे तन्हा कर देगा। आखिरी आयतों में बता दिया कि जो बात नहीं मानना चाहते अल्लाह ताला उनके दिलों को सील कर देते हैं, और वादे अल्लाह के सच्चे हैं, आप हल्के ना पड़े। क्या मतलब कि अल्लाह तआला की बात पे तवज्जो दें। फिर इसके बाद सूरह लुकमान है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक ईमान वाले को जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना इसका दर्स देती है। सबसे पहले कुरान को खुदा व रहमा कहा गया, फिर मुहसिन बनने की बात की गई, नमाज कायम करके जक़ात देना और आखरत पर यकीन रखना, ऐसे लोग मुफले हैं, हमेशा के कामयाब है। यहाँ उन लोगों की बात है जो वक्त की दौलत का इनकार करते हैं और बेकार मशगलों में पड़ते हैं। वमिन नासी में यश्तरी लहुल हदीस, कुछ लोग ऐसे हैं जो खरीद के लाते हैं कलामे दिल फरे, गाफिल करने वाली चीजें, ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें बगैर इल्म के। देखा जाए तो वाकई सच है, हर वो चीज़ जो मकसद से दूर कर दे, हर वो चीज़ जो हो बेकार लेकिन बहुत कारामद चीज़ से बंदे को गाफिल कर दे, मसलन खिलौना है उसमें पड़ गए और नमाज से गाफिल है, और इसी तरह की चीज़ें, और इसी के अंदर फिर गाना बजाना, साज आवाज और टाइम वेस्टर्स हैं, फिर वो आयतों को नहीं सुनते। ये भी एक अजीब सी बात है, जब जिंदगी में लहव आता है ना तो कुरान अच्छा नहीं लगता, कुरान बोझ लगता है, कानों में बोझ पड़ता है। देख लीजिए आयत 7 को, इसके बरक्स जो लोग अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ गुजारते हैं अल्लाह उनको जन्नतों की खुशखबरियाँ देते हैं। फिर आयत नंबर 12 से अगला पूरा रुकू तकरीबन लुकमान की नसीहत सीखते हैं अपने बच्चों के लिए। तबलीग की बहुत खूबसूरत हिकमत है, सबसे पहले बच्चों को शुक्र सिखाई है, बी थैंकफुल। हिकमत का तकाजा है कि सबसे पहले शुक्र हो, जहाँ शुक्र होते हैं ना वहाँ शिर्क नहीं हो सकता। मुशरिक तो है ही ना शुक्रा शख्स, जिसको अल्लाह में नहीं दिखता तो तभी तो दूसरों में ढूंढता है। फिर इसके बाद देखिए कि बच्चे को अल्लाह से जोड़ने के बाद शिर्क की बात की गई। बच्चों को शिर्क का क्या पता, जी शुरू से ही पता है। किसने दी, अल्लाह ने दी। मामा ने दी, नहीं मामा को अल्लाह ने कहा। बाबा लेकर आए, नहीं बाबा को अल्लाह ने कहा। बचपन से अगर माँ बाप बच्चे के अंदर तौहीद की मोहब्बत डाल दें, बहुत सारी चीजों में जो बच्चे दूसरी तरफ चल पड़ते हैं ना, वो चीज बाद में इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। बहरहाल बड़ा खूबसूरत रुकू है, इस पे गौर करें तो हमारे लिए अमल के बहुत सारे नुकते हैं। इसमें तरतीब को सामने रखिए, इस पे लेक्चर्स भी हैं, पूरी सूरत भी तफसीर से अलग मौजूद है, और बच्चों की तरबियत में खासतौर पे पेरेंटिंग ए टू जी में इन आयात को बुनियाद बनाया गया। छोटी छोटी बातों पे बच्चों को समझाइए, ट्रिम करना पड़ता है बच्चों को। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बच्चों को शुरू से बताइए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। आयत 16 में देखिए कि छुप कर भी कोई गुनाह करोगे तो अल्लाह उसको भी ले आएगा। फिर नमाज की बात, मारूफ की बात, मुनकर से रोको। बच्चे कैसे मुनकर से रोके, जी अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि बुरी बात है, किसी की चीज़ नहीं उठाते, किसी की चीज़ लेके नहीं खा लेते। और वसबिर अला मा असाबक, ये कौन सा सब्र है जो बच्चे करेंगे। बेटा अगर आपका शॉपनर कोई ले लेना तो आप सब्र कर लें, इससे बच्चे बड़े होंगे। फिर देखिए बच्चों का एटीट्यूड, रवैया, गाल फुला के बात ना करो, अकड़ के ना चलो, आजजी करो। आज बच्चों में बस दफ़ा ऐसी खराबियां दिखती हैं कि जिसको देखकर महसूस होता है कि उनके अंदर कुछ बड़ा ही है। फिर देखिए चलने का अंदाज, फिर आवाज़ दब के रखो, आहिस्ता बोलो। इसके बाद अल्लाह ताला की कायनात पे गौर करते कराते दोबारा दावत दी गई कि अल्लाह की तरफ रजू करो। फिर इसके बाद अल्लाह ताला की तारीफ़ों की बात करते करते आप देखें तो सूरत के आखिर में इंसान को दुनिया के धोखों से निकाला, नफ्स के धोखे, और पांच चीज़ों का तذکرہ कर दिया जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं है। सूरत सजदा वो सूरत जो रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के सोते थे। इस सूरत में भी आप देखिए तो मौत व हयात का सामान भी है, अल्लाह की कायनात पे गौर भी है, और इसी तरह से क़यामत की बात भी है, और साथ ही साथ बताया जाता है कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौत, आयत 11, कह दीजिए मलकुल मौत तुम्हें फौत करेगा जो तुम्हारे ऊपर मुकर्रर किया गया। क्या मैं और आप मलकुल मौत की निगाहों को अपने ऊपर महसूस करते हैं, और क़यामत के दिन की हसरतों की बात करके अफसोस करेंगे लोग, काश एक बार मौका मिले तो हम हिदायत पा जाएं। फिर इसके बाद ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने जो क्राइटेरियन रखा है, कहता तजाफ़ जनूब हम अनिल मदाजी, आयत 16, पूरी रात बिस्तर पे सोने की बजाय कुछ वक्त तो बीच में इतना हो कि जिसमें अल्लाह को पुकार सके इंसान, और फिर अल्लाह सरप्राइजली उनको इतनी खूबसूरत जन्नत देगा जो कभी ना देखी ना सुनी ना उसका तस्वुर भी आया। फिर साथ ही आयत 21 में बता दिया कि जब लोग बुरे काम करते हैं तो हम आखरत का इंतज़ार नहीं करते बल्कि पहले दुनिया में अजाब देते हैं, यानी उनके गलत रवैयों की सज़ा दुनिया में उनको मिलती है, फिर उसके बाद उनको आखरत में तो बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। और फिर आखिर में बनी इसराइल के तनाजुर में दोबारा मुसलमानों को इस बात का यकीन दिला दिया कि अगर तुम अल्लाह की इस कायनात पे गौर करते हुए उसकी मर्ज़ी पे नहीं चलोगे तो फिर अल्लाह अपने कामों पे कादिर है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया कि आप ऐसे लोगों से बेनियाज हो जाइए। इसके बाद सूरत अलहज़ाब शुरू होती है, जिसमें आज के दौर के दो मारूफ मसले, वॉर्स ऑफ द प्रॉफिट एंड वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी अल्लाह के नबी ने जंगें क्यों लड़ी और आपकी इतनी बीवियाँ क्यों थीं, इस मौजू को टच किया गया और बहुत यूनिक सूरत है। हम इस वक्त इसका बस इतना ही खुलासा कर सकते हैं कि इस सूरत में माशर्ती रसूमात भी टूटती हैं और साथ ही साथ अहकामात भी आते हैं, कहीं पर्दे के और कहीं हिजाब के। और इसमें अडॉप्टेड बच्चों की बात भी है कि बच्चा किसी का अडॉप्ट करना आसान बात नहीं है, कर सकते हो अगर कोई लुटे पुटे लोग खाते हैं, करो उनके बच्चों को, लेकिन बताओ उनको शुरू से पता होना चाहिए कि आप उनके असल माँ बाप नहीं हैं। माँ बाप का नाम पता है तो फिर बाप का ही नाम लगेगा, अगर नहीं पता तो फिर कोई भी नाम दो, लेकिन फिर भी बता दो कि असल माँ बाप कोई और है, इससे बच्चे रियलिस्टिक हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि गज़वा अल अहज़ाब की कुछ झलकियाँ, जिससे पता चलता है कि सारी दुनिया के कुफार भी जमा होके आ जाएं तो वो मुसलमानों का बाल बीका नहीं कर सकते अगर अल्लाह उनका साथ दे। बीच ही बीच में मुनाफिकों की कुछ बातें हैं, हमारे घर खाली हैं, हमें बच्चों का डर है, यानी बहाने कर कर मैदान जंग से भागने की बातें इसमें। राजा चलो ठीक है, ना करो अल्लाह के काम, लेकिन लयन फोकुमुल फिरार, तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा ये भागना अगर तुम मौत से भागना चाहो। यानी मुनाफिक को दीन का काम मौत की तरह लगता है। अल्लाह ताला कहते हैं इनको इनके हाल पे छोड़ दो। और आयत 21 में अल्लाह के नबी को बेहतरीन रोल मॉडल बताया गया, लकद काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। दुआ कीजिए कि अल्लाह के नबी को हम उसवे हसना बना लें, खुशी गम शादी ब्याह पेरेंटिंग ज़िंदगी के हर छोटे बड़े मामले में आपको देखें। फिर इसके बाद सच्चे मोमिनों के ईमान का इजहार है कि जब दीन का कोई तकाजा सामने आता है तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है कि अब हमें भी मौका आ रहा है कुछ हिस्सा डालने। इसके बरक्स मुनाफिक जो हैं वो ऐसे वक्त में इधर उधर भागने लगते हैं। आखिर में अल्लाह की नबी की बीवियों के नाते अल्लाह के नबी को एक मैसेज दिया गया कि जिनको अल्लाह के नबी की बीवी बनना है फिर उनको तो रूखी सूखी खानी ही पड़ेगी, और जितने दर्जे बड़े होते हैं उतनी ही आजमाइश बड़ी होती है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमें इस पूरे पारे में जो बातें हों इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, और इन सारी बातों को सुनने और सुनाने के बाद हम अपना मुहासबा भी करें और साथ ही साथ ये दुआ करें कि हम कहाँ खड़े हैं, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। और इस पारे की आयात तदब्बुर जो हैं वो सूरत सजदा की आयत नंबर 16 और 17 है, जो आपसे और मुझसे इस बात का तकाजा करती हैं कि अगर हम वाकई वो जन्नत लेना चाहते हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए छुपा के रखी है तो कुछ छुपा के भी नेकियां करनी पड़ेंगी, और रात की तन्हाइयों में छुप कर कोई ऐसी नेकी ज़रूर करें कि जो कल अल्लाह को पेश कर सकें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।